ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पारस्परिक विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार समझौते पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में यूरोपीय अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विशाल शर्मा।
भारत ने हाल ही में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने 10 मार्च को 4 यूरोपीय देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिख्टेनस्टाइन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। कितना महत्वपूर्ण है ये समझौता और इस आने वाले समय में इसके क्या असर होने वाले हैं, इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा। गुलशन सचदेवा जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये जो समझौता हुआ है इसके मुख्य उद्देश्य क्या है।
देखिये, मुख्य उद्देश्य वही है कि व्यापार का और निवेश का भारत का और यूरोप के देशों के अंदर बढ़ावा हो। और आपने जैसे बताया, ये जो 4 देश हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिश्टेनस्टाइन जो हैं, 4 छोटे से देश हैं हालांकि, और ये 4 ऐसे देश हैं जो यूरोपीय संघ के समुदाय से बाहर हैं, लेकिन पूरी तरह से ये यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। आप जैसे जानते हैं कि 3 अलग अलग हमारे भारत के व्यापार समझौतों के बारे में बातचीत चल रही है कई सालों से यूरोप में। एक तो यूरोपीय संघ के जो 27 देश हैं उनके साथ, एक अलग से हमारी बर्तानिया के साथ जो चल रहा है यूके के साथ, तीसरा पिछले 15 साल से अलग से हम जो हैं ये यूरोपीय एफ्टा के जो देश हैं, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें ये 4 देश हैं। हालांकि इनकी आबादी अगर आप देखें तो 13-14 मिलियन है, छोटे से देश हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, बाकी दोनों तो बहुत ही छोटे हैं
जी,
लेकिन उनका जो व्यापार है वो लगभग भारत के व्यापार के बराबर है। और भारत का जो उनके साथ और काफी खुले लिबरल इकोनॉमीज हैं, और आप जानते हैं स्विट्जरलैंड जैसी जगह है जहां पे बहुत ही टेक्नोलॉजी का काफी चीजों में, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे वो कुछ खास इंडस्ट्रीज हो, वहां पे वो उनका काफी महत्व है। इसी तरह से नॉर्वे भी जो है छोटा सा देश है लेकिन कई टेक्नोलॉजीज में बहुत आगे है, और खासतौर से तेल के बहुत बड़े गैस के भंडार हैं उनके पास। उनके पास काफी निवेश करने के लिए पैसा है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, और वो भी चाहते हैं कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े, और उससे उनकी जो टेक्नोलॉजीज उनके पास है उनको बड़े स्केल पे यहाँ पे बड़ी मार्केट मिले। तो दोनों देशों के लिए, भारत के लिए भी और उनके लिए भी ये फायदा है, और हमारे लिए भी एक टेस्टिंग ग्राउंड है एक तरीके से, क्योंकि अगर हम ये वाला व्यापार समझौता हमारा बाद में लगे कि इससे हमको फायदा हो रहा है, तो उससे हमको हौसला मिलेगा कि हम बाकी का जो यूरोपीय संघ के देशों के साथ जो नेगोशिएशन चल रही है उसमें भी कुछ मदद मिलेगी। और जिस तरह का समझौता हमने इनके साथ किया है तो वो भी एक तरीके का एक टेम्पलेट यूके के साथ और यूरोपीय संघ के देशों के साथ जब हम समझौता करने की कोशिश करेंगे तो उन बिंदुओं के ऊपर ध्यान रहेगा, उनका भी और हमारा भी।
समझौते में एक मुख्य बात यह भी सामने आई है कि अगले 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख रोजगार देने के बाध्यकारी प्रतिबद्धता समझौते भी हुआ है। ये कितना महत्वपूर्ण है, निवेश भी आएगा, 100 अरब डॉलर का ये 4 देश निवेश करेंगे और इससे रोजगार, 10 लाख रोजगार भी सृजित होंगे, इसको आप कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं?
नहीं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से जो निवेश वाली बात, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और उनके पास बहुत पैसा है, तो वो चाहेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का वो भी फायदा ले, और एक तरीके से उन्होंने कमिटमेंट किया है। हालांकि जो निवेश होगा वो तो प्राइवेट कंपनीज अपने हिसाब से करेंगी, उन्होंने एक अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है कि हम अगले 10 साल में $50 बिलियन लगाएंगे, फिर उसके आने वाले 10 साल में और उसके अंदर लगाएंगे, और अगर वो इतना पैसा भारत के अंदर वहां की कंपनीज नहीं लगा पाती है तब उसके बाद हमने, क्योंकि इसके अंदर पूरा रिव्यू क्लॉज और वो सब चीजें भी हमने बड़े ध्यान से रखी हैं, तो भारत ने जो कुछ रियायतें उनके प्रोडक्ट्स को दी हैं उन रियायतों के बारे में भारत दोबारा से विचार विमर्श कर सकता है, क्योंकि ये एक तरीके से बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट है जिसमें गुड्स की बात नहीं है, उसमें सर्विसेज ट्रेड के बारे में काफी बात हुई है, उसमें इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की बात है, उसमें गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की बात है, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेबर इश्यूज, ह्यूमन राइट्स, ये सब चीजों के बारे में भी बात दोनों तरफ से कमिटमेंट की गई है। हालांकि ये चार छोटे देश हैं, लेकिन एक जिस तरह का मॉडल एग्रीमेंट बाकी यूरोप के देश करना चाहते हैं, तो इस तरह से भारत ने एक तरीके से एक कॉन्फिडेंस दिखाया है कि हम स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे देशों के साथ समझौता व्यापार में कर सकते हैं, तो उसी तरह का समझौता बाकी जो यूरोप के देश हैं उनके साथ भी पॉसिबल है। और जिस तरह के हमने जो अपने अर्थव्यवस्था के कुछ चीजों में उनको काफी गहराई से जो पूरी नेगोशिएशंस हुई हैं, कुछ चीजों में उनको जो एंट्री मिलेगी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसी तरीके से जैसे वाइन वगैरह है, उसमें यह है कि जो सस्ती वाइन है वो यहाँ पे उनको कोई छूट नहीं मिलेगी। और तरीके से जैसे काफी बड़ा जो हम स्विट्जरलैंड से सोना वगैरह भारत में आयात होता है, उसके ऊपर उनको हमने कोई छूट नहीं दी है। तो मुख्य जो है फोकस रहा है वो किस तरीके से जो भारत के जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उनको वहां पे कुछ ज्यादा कोशिश मिले कि वो आप वहां की मार्केट पे एंटर कर पाए।
जी, समझौते से अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों को हम सबसे अधिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि चारों देश अलग अलग क्षेत्रों में ग्लोबल लीडर माने जाते हैं, चाहे वो वित्तीय सेवा हो, बैंकिंग हो, फार्मा हो, मशीनरी हो, तो क्या सहयोग के नए दरवाजे भी खुलेंगे इन क्षेत्रों में?
निश्चित तौर से, अगर ये वहां की जो उम्मीद जैसे इस समझौते में जताई गई है, क्योंकि कुछ ऐसी एरियाज हैं जिनका आपने जिक्र किया, उनके अंदर वो काफी माहरियत है वहां की कंपनीज को टेक्नोलॉजी में, ग्रीन टेक्नोलॉजीज है पूरा उनके अंदर भी। तो इसी तरह से भारत में भी हमको लगता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, खासतौर से जो आईटी का क्षेत्र है या कुछ सर्विस के क्षेत्र हैं, जिसमें हम भी अपने आप को काफी कम्पिटेटिव मानते हैं। तो उससे हमारी कंपनीज हैं उनको भी फायदा होगा, क्योंकि वहां से उनको निवेश मिलेगा, किस तरह से हमें जो है और फैसिलिटी मिल सकती है। और वहां की कंपनीज भी अब देखेंगी, क्योंकि भारत के साथ अब ये समझौता हो गया है, तो नए निवेश के यहाँ पे कौन कौन से आयाम हो सकते हैं और कैसे वो यहाँ पे अपनी एग्जिस्टेंस है उनको एक्सपेंड करे, तो काफी रास्ते खुल जाएंगे। वही शायद उम्मीद जताई गई है कि काफी निवेश वहां से आ सकता है, और जब वो निवेश आएगा, चाहे वो शेयर बाजार में आएगा, चाहे वो वैसे एफडीआई के थ्रू आएगा, तो उससे भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मौका मिलेगा और वहां के रोजगार के साधन यहां भी मिलेंगे, और हमारे जो लोग वहां पे जाके काम करना चाहते हैं उनकी जो क्वालिफिकेशंस वगैरह है उसको भी इक्वली माना जाएगा और कंपनीज को इक्वल ट्रीटमेंट वहां पे दिया जाएगा, यहां की कंपनी को वहां के और वहां की कंपनीज को भारत के अंदर। तो आने वाले सालों में उम्मीद है कि भारत की कंपनीज को भी वहां पे जाने का और मौका मिलेगा, और खासतौर से जैसे ये देश यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया के हिस्से हैं और शेंगेन के भी पार्ट हैं, तो यहां से कुछ कंपनीज वहां पे सेट होके वहां पे यूरोप के देशों के अंदर भी एक्सपेंड कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि हम, जैसे मैं पहले बताया कि हम यूरोपीय संघ के देशों के साथ भी मुक्त समझौते के बारे में बातचीत हमारी चल रही है, तो एक तरीके से मुझे लगता है उसी का ये पहली कड़ी है, क्योंकि सिर्फ आइसोलेशन में हम इसको नहीं देखना चाहिए। वो क्योंकि अर्थव्यवस्था यूरोप के साथ जुड़ी हुई है, तो सिर्फ हम इनके साथ अगर समझौता करके खत्म कर लेते हैं तो उसमें कुछ डिस्टॉर्शंस भी लंबे समय में आ सकती हैं। तो इसलिए हम साथ साथ उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम कामयाब होंगे दोनों, यूके के साथ भी और बाद में यूरोपीय संघ के देशों के साथ भी, जो हमारा समझौते की बातचीत चल रही है उसमें भी कुछ सफलता मिलने की उम्मीद है।
समझौते की जब इम्प्लीमेंटेशन की अमल की बात आती है, तो क्या आप आने वाले समय में इस समझौते के अमल में कुछ चुनौतियां भी देखते हैं, कुछ बाधाएं भी आपको लगती हैं कि कुछ आएंगी आगे?
देखिए, अभी तो कुछ वक्त तो लगेगा इसको रेटिफिकेशन वगैरह होने में, क्योंकि भारत में तो ये तुरंत पार्लियामेंट में नहीं जाता है कोई भी एग्रीमेंट, लेकिन उन देशों में वहां पे रेटिफिकेशन होगा पूरा, तो उसमें थोड़े से कुछ महीने एक साल तक भी लग सकता है। अगर आप डिटेल में एग्रीमेंट को पढ़ें तो उसमें जो रूल्स ऑफ ओरिजिन के क्लॉज हैं वो काफी डिटेल में लिखे गए हैं, क्योंकि वो काफी तौर से जुड़े हुए हैं यूरोप के देशों के साथ, कि ऐसा ना हो कि यूरोप के देशों का जो सामान है सारा वो इन कंट्रीज के थ्रू भारत में आना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तक हमारा उनके साथ कोई समझौता नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बहुत कोई ऐसी दिक्कत वहां पे आने वाली नहीं है इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि मच्योर इकोनॉमीज हैं और दोनों का हम पहले से उनके साथ काफी ट्रेड वगैरह करते रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पूरी तरह से जुड़ी हुई है उनकी अर्थव्यवस्था, चाहे वो निवेश का मामला हो, चाहे वो व्यापार का मामला हो, तो वो मुद्दे किस तरीके से कहीं डिस्टॉर्ट ना पूरे ट्रेड एग्रीमेंट को कर दें, लेकिन मुझे लगता है उन सब चीजों के बारे में काफी पहले से ठीक से गहन अध्ययन किया गया है और उनको एग्रीमेंट में सब चीजें ला दी गई हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आने वाली है इसके इम्प्लीमेंटेशन में। लेकिन यह कि हमको इसके साथ साथ बाकी जो यूरोप के देशों के साथ जो हमारा नेगोशिएशन चल रहा है उसको भी और तेजी से आगे बढ़ा के उसको भी कंप्लीट अगर कर लेंगे तो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा पैकेज वो बन जाएगा।
जी, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा और नॉर्वे दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और ये भारत और ईएफटी ने बड़े पैमाने पर संवेदनशील कृषि उत्पादों और सोने के आयात को समझौते से बाहर रखने पर सहमति व्यक्त की है। डेयरी हो, कोयला है, सोया, संवेदनशील कृषि उत्पाद शुल्क छूट के दायरे से बाहर रहेंगे, तो जो जटिलताएं हैं ये भारत को स्विट्जरलैंड में कृषि उपज निर्यात करने में आगे चल के कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
जो भारत ने जैसे इस समझौते में अगर आप डिटेल में देखें तो अपनी 83% जो टैरिफ लाइंस हैं उसके ऊपर सहमति जताई है और तुरंत सामान आना भारत में नहीं शुरू हो जाएगा, उसमें एक पूरा टाइमलाइन है, 5-7 साल के अंदर जाके पूरा वो आना शुरू होगा। इसी तरीके से जो उन्होंने अपने 92% के करीब टैरिफ लाइंस को भारत के लिए खोला है तो उसमें हमारे जो मोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर वहां भी बहुत हाईली सब्सिडाइज है यूरोप के अंदर भी, और उनके लिए एग्रीकल्चर कोई इतना बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है, तो हम नहीं चाहते हैं कि वहां के कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो भारत में आए और भारत के किसानों को या भारत की जो डेयरी इंडस्ट्री है उसको उससे कोई नुकसान हो, तो उन प्रोडक्ट्स को हमने एक तरीके से नेगेटिव लिस्ट में बाहर रख दिया है। इसी तरह से उनके जो कुछ 5-7% प्रोडक्ट्स उन्होंने अपने उसको बाहर कर दिया है। जैसा आपने कहा कि लगभग 12-13 बिलियन डॉलर का पिछले साल जैसे हम देखें उससे पिछले सालों में और भी वो है, वहां से सोने का निर्यात स्विट्जरलैंड से भारत से होता है, तो सोने के निर्यात के ऊपर हमने कोई उनको कोई खास ऐसी छूट नहीं दी है, तो इसलिए हमको सिर्फ जो कंसंट्रेट करना है जो बाकी का जो हमारे 2 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट्स हैं देशों के अंदर और उनके जो वहां पे 3-4 बिलियन, 5-4 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स जो भारत के अंदर है। एग्रीमेंट के पीछे एक एक प्रोडक्ट्स को अगर आप देखें, चाहे वो ऑटो प्रोडक्ट्स चाहे वो वाइन प्रोडक्ट्स हो, तो सबके बारे में काफी डिटेल में वहां पे अध्ययन करने के बाद उसके अंदर जोड़ी गई है चीजें, कौन से प्रोडक्ट आ सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स नहीं आ सकते हैं, काफी गहराई से मुझे लगता है कि सरकार ने इसके बारे में अध्ययन करने के बाद कहीं बाद में ऐसा न हो कि हमको दिक्कत आए किसी किस्म की, और उसके बावजूद भी इसके अंदर एक पूरा एक रिव्यू क्लॉज भी लिखा गया है कि अगर किसी कारण से हमको ये लगता है कि बहुत सारा वहां से इम्पोर्ट शुरू हो गया कुछ साल के बाद तो हम उसके ऊपर उसको बंद भी कर सकते हैं, उसके ऊपर उनको दोबारा भी कह सकते हैं कि हम वहां पे जाके इसको रिव्यू कर सकते हैं। इसी तरीके से जो निवेश उन्होंने जो कमिटमेंट किया है अगर वो निवेश नहीं आता 15 साल में उतना, तो 15 साल के बाद जो उनको छूट हमने दिए उस छूट से भी हम उसको मना कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं और हमने बहुत सारे एग्रीमेंट एडवांस्ड इकोनॉमी के साथ अभी तक किए हैं, क्योंकि हमारे जो बाकी एग्रीमेंट्स हैं वो एशियन कंट्रीज के साथ काफी यहाँ पे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद ये दूसरी ऐसा देश है जिसके साथ हमने एक ऐसा व्यापार समझौते की, तो एक तरीके से वो टेम्पलेट मुझे लगता है बनता जा रहा है कि अगर हम जैसे ऑस्ट्रेलिया से हमने समझौता किया था अभी हम जो इन कंट्रीज के साथ किया है, तो जो बाकी हमारी नेगोशिएशन जो बर्तानिया के साथ, यूरोपीय संघ के साथ और बाद में कभी जो अमेरिका वगैरह के साथ भी होगी, तो किस तरीके का ढांचा, कौन सी चीजों में भारत छूट दे सकता है, कौन सी चीजें हमारी रेड लाइन है जहां जहां से हम उसको छूट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे जो कंज्यूमर है और या हमारे जो किसान है या हमारे उद्योगपति हैं वो उसको सहन कर पाएंगे, वो चीजें काफी साफ इस समझौते से होती
है। उम्मीद करते हैं कि भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच जो ये व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ है इससे बड़े पैमाने पर निवेश तो होगा ही और रोजगार सृजन भी होगा, और साथ ही साथ आने वाले समय में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में ये राह को भी आसान बनाएगा। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे पारस्परिक विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार समझौते पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में यूरोपीय अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विशाल शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।